आते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिता रिष्यते तदागंतासि निर्वेदम् श्रोतवस्याश्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम् बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम् श्रोतवस्याश्रुतस्य च। इसका अनुवाद है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनमनसक हो जाओगे। यदा का अर्थ है जब, ते मतलब तुम्हारा, मोह कलिलम घने जंगलों को बुद्धि बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतीतृष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गंता असी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतवस्य सुनने योग के प्रति श्रोतस्य सुने हुए को भी च मतलब भी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जीवन में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो कि इस घोर जंगल को माया के पार कर जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो उसके सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णता अनिमंसक हो जाता है, भले ही वे अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य माधवेंद्रपुरी का कहना है कि हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री माधवेंद्रपुरी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। माधवेंद्रपुरी कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पूरे वृंदावन में यति राज के नाम से जाने जाते हैं। यति मतलब होता है जो भिक्षाटन कर कर भीख मांग करके खाता है, यति। और वो उन सारे यतियों में ही इज द किंग ऑफ ऑल द सन्यासी, यति सन्यासियों में राजा है क्योंकि उनके जैसी विरक्ति किसी में भी नहीं है। तो इसी कारण से जिस जगह वो रहते थे उस स्थान का नाम यतिपुरा पड़ा। तो अभी कई लोग गोवर्धन जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि कहाँ गए थे, बोले जी जटीपुरा गए थे। सुना है आपने जटीपुरा? कितने लोगों ने सुना है? तो जटीपुरा नहीं है, उसका नाम यतिपुरा है। यतिपुरा क्यों? क्योंकि वहां पर कौन रहते थे? यतिराज माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त है भगवान के कि उनका साक्षात भगवान से वार्तालाप होता है। भगवान के भजन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में कर्म कांड, पूजा पाठ, आरती विधि इसके प्रति ज्यादा रुचि नहीं रहती। और कई लोग बोलते भी हैं कि आप लोग तो भजन करते हो उसका मतलब आपके जीवन में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? फिर भी इस्कॉन केंद्रों में समझाया जाता है कि नहीं नहीं आप बैलेंस मेंटेन करिए। लेकिन अगर भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाए उसके बाद जीवन की ये छोटे मोटे यज्ञ करना है ना, सोमवार का व्रत, मंगलवार की पूजा, बुधवार की पूजा, बृहस्पतिवार में केले की पूजा, शुक्रवार को दुर्गा माई की पूजा, लक्ष्मी जी की, संतोषी माता की, शनिवार को जय शनिदेव, सोमवार को सूर्यदेव पूजा, इसका कोई विशेष औचित्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है और उसके बारे में इधर भगवद गीता में भी बताया गया है। वो कहते हैं कि जीवन में हम बहुत सारे लोगों के ऋणी होते हैं, कई प्रकार के ऋण, जैसे सूरज हमको ऋण देता है, क्या हम अपने कपड़े सुखाते हैं और वो सूख जाते हैं। आप प्रेस वाले से कपड़े सुखवाइए या ड्रायर मशीन में किसी से करवाइए तो कितना चार्ज लेते हैं? लेकिन सूरज सुखाता है तो कुछ देता है। अभी आप अंदर एसी लगा के बैठते हैं उसका चार्ज देते हैं, लेकिन अभी जो ये एटमॉस्फेयर है, ये वातावरण, आनंद समीर हवा चल रही है, इसके लिए वायुदेव के हम ऋणी नहीं हो गए, तो उसको ऋण को चुकाएंगे कैसे? अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का हम कुछ ना कुछ जल ग्रहण करते हैं, एक्वाफीना या बिस्लेरी, इनको हम 20-25 रुपए बॉटल का देते हैं, आप सोच के देखिए कि समुद्र में अथाह जल भरा है, नदियों में अथाह पानी बह रहा है, पहाड़ों में झरने बह रहे हैं, धवल दूध की जैसी धारा बह रही है, उसके प्रति कौन ऋण चुकाएगा? तो अगर हम 33 करोड़ देवी देवताओं का ऋण चुकाने जाएं, तो हमारा ये पूरे जीवन में हम सिर्फ 9 लाख देवताओं का ऋण चुका पाएंगे, अगर हम सबका चुकाना शुरू करें तो कर पाएंगे एक जीवन में 33 करोड़ देवी देवताओं का ऋण? क्या करना पड़ेगा? कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में आता है, देव ऋषि भूत तृप्त निराणाम पितृणाम ना। क्या बोलते हैं? देव ऋषि भूत तृप्त निराणाम पितृणाम ना। देवता जितने भी हैं, ऋषि, जिन ऋषियों की हम संतान है, जिनके ज्ञान को आज हम पढ़ रहे हैं, वेद व्यास ऋषि जो है पराशर मुनि और सत्यवती माता से उत्पन्न होते हैं, और वो जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने एक सबसे बड़ा विलक्षण सेवा करी, ग्रंथों को 4 भाग में बांट देना। पहले वेद एक ही था, उसको विशेष काल, समय काल, परिस्थिति और समझने की जो लोगों की योग्यता उसके अनुसार 4 भागों में बांटा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ऋग्वेद, और उनके अनेक आचार्य भी बना दिए, जैमिनी ऋषि, पेल ऋषि, वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से अनेक लोगों को बांटा, और पुराण इतिहास आदि रोमहर्षण महाराज को दिए, जो सुत गोस्वामी के पिता हैं। तो इस तरह से सभी भागों में वेद व्यास बांटे। तो ये ऋषि हैं जिनके ग्रंथ को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ऋषियों के ऋणी नहीं हो गए? इन्हीं पुराणों को पढ़कर तो हम जीवन अपना चलाते हैं, मैनुअल है हमारे ह्यूमन बीइंग का, एक मैनुअल है। और भूत और निर्णाम, जितने भी हमारे भूतकाल में हुए पूर्वज हैं, उनके भी हम ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ये परंपरा, ये शारीरिक परंपरा प्रदान करी, हमारे पिता को दिया, पिता ने हमारे को ये शरीर दिया। पितृणाम, जो हमारे पितृ हैं, उन्होंने हमें संस्कार भी दिए हैं। किंकरो नायम ऋणी च राजना, हे राजन, तुम किसी के भी ऋणी नहीं रहोगे। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, देव ऋषि भूत तृप्त निराणाम पितृणाम किंकरो नायम ऋणी च राजना। हे राजन, तुम किसी के ऋणी नहीं रहोगे अगर ये काम करोगे। क्या काम? सर्वात्मनम यम शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्त कर्तम। सर्वात्मनम यम शरणम शरण्यम, सबकी आत्मा में रहने वाले कौन? भगवान। शरणम शरण्यम, जिनकी शरण में दुनिया जाती है, देवता जाते हैं, ऋषि जाते हैं, उनकी शरण में आप भी चले जाओ। कौन है वो? गतो मुकुंद परिहत्त कर्तम। अगर आपने ऐसे मुकुंद की शरण ग्रहण करी, परिहत्त कर्तम, बाकी सारे कर्तव्यों की कोई आवश्यकता नहीं रही। जरूर नहीं फिर गणेश जी का गणेश चतुर्थी बनाए, शिव जी का सोमवार बनाए, या दुर्गा जी का नवरात्रि बनाए। तो कितना सरल भगवान ने भागवतम और अनेकों ग्रंथ में वर्णन किया, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया। कहते हैं भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द डुप्लिसिट्स। जो दोगले हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, जप नहीं कर पाएंगे, विधि मार्ग है, इतना मुश्किल है प्रभु जी भक्ति करना। भक्ति सरल है ना, बहुत ही सरल भक्ति है, सिंपल, बट बिकम्स डिफिकल्ट बाय कॉम्प्लिकेटेड पीपल। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप हैं, हर एक चीज को एलजेब्रा से नापतोल करेंगे, हर चीज को थियोरिटी से नापतोल करेंगे, ट्रिपल ब्यूरेट टेस्ट लगाएंगे हर एक के अंदर, ऐसा नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, सरल व्यक्ति के लिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कॉल किया भगवान को, भगवान को नंबर मिलाया तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने एग्जीक्यूटिव रखे हैं, एग्जीक्यूटिव ने फोन उठाया और कहा किससे बात करनी है, कहा जी मैं भगवान कृष्ण से बात करना चाहता हूँ, मेरे जीवन के कुछ संशय हैं। तो उस एग्जीक्यूटिव ने कहा देखिए आपने ना गलत समय पे कॉल किया, अभी भगवान बिजी हैं, वो अपनी रासलीला में बिजी हैं, उनका अलग अलग नित्य अष्ट काले लीलाएं चलती हैं, सुबह बाल भोग लेते हैं, फिर गाय चरण लीला करते हैं, उसके बाद दोपहर में जाते हैं, फिर वो भोग प्रसाद लीला करते हैं, फिर बाद में विश्राम लीला करते हैं, फिर वहां से गोचारण लीला करते के बाद में गोधूली लीला में वापिस आते हैं, और फिर उसके बाद में भगवान रात्रि में शयन लीला करते हैं, बीच में रास लीला भी है, क्रीड़ा लीला भी है, अनेकों विहार लीला, स्नान लीला, बते बहुत लीलाएं करते हैं। तो आपने अभी इस समय गलत समय फोन मिला है, भगवान बिजी है। अच्छा मेरे प्रश्नों के उत्तर फिर कौन दे सकता है अगर भगवान बिजी रहते हैं? कहा बताइए, उन्होंने हमको एज ए टेलीकॉलर रखा है, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। कहा ठीक है बताइए कि अगर भगवान के धाम में घर लेना हो, सब कहते हैं इस घर को छोड़कर उस घर चले जाएंगे, इस घर को छोड़कर मैं आऊंगा, तो भाई आप एक किराए का मकान छोड़कर के अपना घर बनाते हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे में बनाए या नोएडा एक्सटेंशन या फरीदाबाद एक्सटेंशन या गुड़गांव एक्सटेंशन, ग्रेटर फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर गाजियाबाद, जब बनाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, और इधर किराए के मकान में या पुराने मकान से नए मकान की तैयारी। उन्होंने कहा मैं जिस मकान में रहता हूँ इस मकान से उस मकान में आना चाहता हूँ जो गोलोक धाम का मकान है, जिस मकान में बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे के सारी चीजें चलती है, ना तद भसाय तो सूर्यो ना शशांको ना पाव कहा यद गत्वा ना निर्वंत ते तद धामम परमम महा। उसने कहा भगवान ने गीता में कहा है ना सूर्य की आवश्यकता है, ना हवा की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, इस घर में आने के बाद तुम्हें दोबारा किसी और घर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो धाम मेरा धाम है। तो मैंने सोचा चलो उनके धाम में फोन मिलाऊं और एक जमीन खरीद लूं, तो जमीन खरीदनी है ताकि घर बना सकूं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है? कहा देखिए भगवान के धाम में अगर घर बनाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ पेमेंट देना पड़ता है। क्या पेमेंट है? तो उन्होंने कहा पहला पेमेंट है विश्वास। क्या है पेमेंट? फेथ। अब जिसको फेथ ही नहीं होगा वो व्यक्ति कैसे इस मार्ग में अग्रसर होगा? पहली चीज है विश्वास। क्या होता है, जैसे आप कोई प्रवचन डालो, उस प्रवचन में या प्रवचन देने जाओ, 60% लोग होते हैं उनको फेथ होता है, 40% होते हैं जिनका फ्लिकरिंग फेथ होता है। फ्लिकरिंग फेथ मतलब है और कभी नहीं है। जैसे एक बार एक महाराज को बुलाया गया कथा करने के लिए, वो आए गांव में कथा करने के लिए, तो उनसे पूछा आप में से कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? तो सारे लोगों ने कहा सब करते हैं। कहा जब सब करते हैं तो मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है? तो लोग बोले पंडाल लगाया है, प्रसाद बनाया है, सब वेस्ट हो जाएगा, आप कथा तो यही कर सकते हैं और सुंदर कथा करते हैं, भाई बोलना तो आप ही को पड़ेगा। स्वामी जी आप आकर बैठिए, हम आपको बोलते हैं, आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। दोबारा आए, पूछा आप में से कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? इस बार सबने हाथ नहीं खड़ा किया। बोले जब कोई करता ही नहीं तो मेरे बोलने का क्या फायदा? बोले नहीं नहीं महाराज अगली बार आप आइए, अब इस बार हम लोग इस बार जरूर आपकी कथा सुनेंगे। बोले करें क्या? बोले आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे, आधे लोग नहीं खड़ा करेंगे। फिर आए उन्हें पूछा भगवान पर विश्वास कितने लोग करते हैं? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने नहीं। तो जो खड़ा किए थे उनसे बोले आप लोग जो विश्वास करते हैं और आधे लोग नहीं करते हैं, आप लोग इनको बताइए कि भगवान पर विश्वास करना क्यों जरूरी है और मैं जाता हूं। तो एक व्यक्ति जिसको भजन में आनंद आता है ना, वो सब इन चीजों में पड़ता नहीं है, तो वो चलेगा। और हम उन लोगों की तरह है जो कभी कहते हैं विश्वास है और कभी कहते हैं नहीं। मेरे जीवन में मेरी इच्छा रूप सारी चीजें हो रही हैं। यस यस बढ़िया है, भगवान की बहुत कृपा है। पहले स्कूटर पे चलते थे, नाउ वी हैव बिग कार, अभी बड़ी कार है। पहले हमारे पास छोटी गाड़ी थी, अभी बड़ी कार, इसलिए हमारा अहंकार भी हो गया है बड़ा, है ना। पहले हम छोटे घर में रहते थे, अभी हमें 5 रूम का फ्लैट है, तो अभी हम फ्लैट हो गए हैं, अभी हमें और कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की बहुत कृपा है। लोगों को ये लगता है कृपा मतलब हनी 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 मनी 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 चिंता मनी, मतलब चिंता अबाउट मनी। लेकिन सच्चाई ये है मनी बढ़ना भगवान कहते हैं, या जीवन में तरक्की हो जाना, ये मेरी कपट कृपा है। कृपा करता हूं लेकिन कपट कृपा है, क्योंकि वो मेरे प्रेम का आनंद नहीं मिला पा रहा है। वो बाहर ये भी भौतिक जगत में फंसा हुआ है बेचारा, उसे लग रहा है धन बढ़ेगा तो कृपा है, और किसी की बीमारी हो जाए तो कैंसर, तो क्या बोलेगा भगवान की कृपा है? तो इसका मतलब भगवान पे विश्वास
नहीं।
रक्षति ते कृष्णा ना रक्षति ते कृष्णा। एक भजन गाते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। हे प्रभु तुम्हारा अधिकार है इस नित्य दास पे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार है। ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास, जिस दिन ये विश्वास है उसे भगवान कह रहे हैं ये पेमेंट देना पड़े। अभी तो ये बहुत ही भारी आवरण पर भक्ति चल रही है, प्रभु जी आए मंगलवार को खिचड़ी मिलती है चले जाते हैं, सुनने में सत्संग अच्छा है, उन्होंने कहा हरे ना हरे कृष्ण कलयुग में जपना चाहिए, चलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन सच्चाई क्या है, जैसे ही दुख आएगा, भगवान कहते हैं टेस्टिंग टाइम, जब मैं देखता हूँ भक्त प्रगति कर रहा है और माया का अब असर बंद करना है तो एक दुख देता हूँ, छोटा वाला, बहुत बड़ा नहीं देंगे, पहाड़ के नीचे तो हम दब जाएंगे, छोटा कंकड़ मारेंगे, देखते पलट कर क्या बोलता है। ऐसे हुआ कल हम वृंदावन में थे, तो वहां पर जमीन जो है वो गर्म होती है, तो सारे भक्त साथ साथ चल रहे थे, तो जैसे ही हरे कृष्ण कृष्ण जप कर रहे हैं, जैसे ही जमीन गर्म आई मुंह से आवाजें निकलने लग गई, है ना, उइमा उइमा बड़ा गर्म है, उइमा प्रभु जी हरी बोल, उइमा उइमा। मैं कहा उइमा ये हरे कृष्ण कहाँ चला गया, यही फेथ है बस आपको, इतना सा दर्द सहते ही उइमा आइमा ओमा ओ पिताजी, है ना, ये पता चलता है कि अभी कितना कृष्ण पर विश्वास है, क्या भगवान का नाम जपने का। मैंने कहा आप हरे कृष्ण कहते ना तो ये जमीन आपको गर्म नहीं लगती। और फिर उन्होंने दोबारा ट्राई किया एंड दे चैंटेड हरे कृष्णा, और दूसरी बार वो उसी पत्थर पे से निकले और उनको नहीं दर्द हुआ, हुआ पर उससे बहुत कम। तो हमारा विश्वास जो है वो हिलता है, डगमगाता है, तो भगवान कह रहे हैं उस एग्जीक्यूटिव कह रहा है पहला पेमेंट है विश्वास, पूर्ण विश्वास, है ना, और दूसरा है भगवान का प्रेम। क्या है प्रेम? अब ये प्रेम जो है, प्रेम करने का मतलब है जैसे बच्चा प्रेम करता है किससे, अपनी माँ से, या एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का प्रेम। अभी आपसे प्रश्न पूछता हूँ, शर्माइएगा नहीं, सभी के जीवन में प्रेम संबंध रहा होगा, या तो जिसकी लव मैरिज हुई है उसका पति से, और जिसकी अरेंज मैरिज हुई है उसका किसी और से रहा होगा जीवन में, रहा है किसी का प्रेम? सच बोलिएगा, प्रेम संबंध, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना रहा कि नहीं, सब बिना प्रेम वाले लोग हैं, झूठ है, झूठ झूठ बोल रहे हैं। जीवन में किसी ना किसी तो प्रेम रहा होगा, सबको किसी ना किसी से, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, सच बोलिए, रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए कि अगर वो लड़की या स्त्री जिससे आपको प्रेम है या था, वो आपको बोले कि मैं 3:30 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरूंगी और मुझे घर तक छोड़ दीजिएगा, तो आप कितने बजे स्टेशन पहुंचेंगे? हाँ जी 3 बजे पहुंच जाएंगे, है ना। मैं एक जगह पूछ रहा था तो वहां पर एक माता जी बोल रही थी रात भर नींद ही नहीं आएगी। हाँ तो सोचिए आप जरा, कृष्ण से अगर प्रेम होगा तो क्या हालत होनी चाहिए। 4:30 मंगला आरती होती है या घर पर आरती होती है, ठाकुर जी नित्य 4:30 बजे उठकर बैठते हैं, और 4 बजे नींद खुल जाए या रात भर नींद ही ना आए कि कब सुबह फिर से देखेंगे, अभी तो सो रहे होंगे ना, सुबह उठेंगे उन्हें बोलेंगे उठी नो श्री नंदलाल आए नमः, उठो नंदलाल उठो, ऐसा प्रेम आ जाए जिस दिन, वो प्रेम। अभी तो प्रेम कैसा है, भौतिक प्रेम। अपना आरती करते करते भी फोन आए, बच्चा बोले मम्मा फोन आया ऑफिस से आपका प्रमोशन हो गया, अगरबत्ती आरती जलती हुई छोड़ करके, अच्छा मैं अभी फोन मिलाती हूँ, कितने पैसे बढ़ गए मेरे, है हो गया प्रेम समाप्त। तो ये ठाकुर जी से प्रेम, वो कह रहा है एग्जीक्यूटिव दो चीजें हैं, पहला विश्वास और दूसरा प्रेम। अभी प्रेम में धोखा भी मिलता है ना, प्रेम में कई बार अभी सबने अरेंज मैरिज की हाथ नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि सबने धोखा भी खाया है ना। वो जो धोखा है उसके बाद भी आपका उस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती है, वो प्रेम चलता रहता है। और लोग बोलते हैं ये तो भौतिक संसार का अंश मात्र के अंश मात्र का 0.00000001% प्रेम है, जिसे लैला मजनू का नाम दिया जाता है, वो 0.00001%। और कृष्ण प्रेम आनंद का अपार भंडार है ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के संकीर्तन यज्ञ में इतना आनंद है क्या बताएं। लेकिन विश्वास और प्रेम, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो आदमी समझ गया, बोला ठीक है जी मैं समझ गया, विश्वास और प्रेम हमें देना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस विश्वास और प्रेम को देने के लिए अर्जित भी तो करना पड़ेगा। अब इस संसार में उस विश्वास और प्रेम को अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा उसके लिए भी दो कमाई है, पहली है विनम्रता और दूसरी है सहनशीलता। पहली है विनम्रता और दूसरी है, जब हम भक्ति शुरू करेंगे उस भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, लोग आपका उपहास करेंगे, है ना। हमेशा हम डिस्कस करते हैं 4 steps of bhakti। पहली है, 4 सीढ़ियों में भक्ति की, पहली है जब आप भक्ति करेंगे तो आपके आसपास के वातावरण के लोग जो भौतिक संसार में लिप्त हैं, जिनको बोला जाता है पिज्जा बर्गर फैमिलीज, है ना। पिज्जा बर्गर फैमिली मतलब वो PVR पे जाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे और उनके लिए वही आनंद है जो कि मतलब किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है ना। भाई बर्गर खाया, फेंक दिया, सामने से कुत्ता है उसने भी खा लिया बर्गर, टेस्ट थोड़ी डिफरेंट हो गया, तो उसने भी बर्गर खाया, हमने भी बर्गर खाया। मनुष्य शरीर का फायदा क्या उठाया हमने, जो मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, और इस मनुष्य शरीर में साधन आनंद जो है भगवान का प्रेम आनंद वो नहीं मिलता। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, जब भक्ति शुरू करो तो पीपल विल नेग्लेक्ट यू, लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे, है ना, बोलेंगे कि अरे 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 इनका बेटा या इनकी बेटी या इनकी बहू तो क्या हो गई है, मीराबाई बन गई है, साधु बन गई है, जहर पिला दो बस अब तो उनको, मीराबाई का टेस्ट ले लो अब तो। इस तरह से उपहास करते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन पेमेंट क्या है प्रेम प्राप्त करने की, विनम्रता सहनशीलता। सहनशील रहना है, बोलना भी कुछ नहीं है और अपना नाम जप करते रहना है। नेग्लेक्ट करने के बाद में कुछ दिनों बाद वही पारिवारिक लोग, वही मोहल्ले वाले, वही सब क्या करेंगे, एक्सेप्ट यू, आपको स्वीकार कर लेंगे जैसे आप है वैसे। अब ठीक है जैसे भी है, माला जपते हैं, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, उनका उनका रास्ता, हमारा हमारा रास्ता, ठीक है आओ भाई खा लो प्रसाद खा लो। अब बुराई करनी बंद कर दी, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के कुछ दिनों तक अगर आपका दृढ़ विश्वास चलता रहा भक्ति में, और गीता पढ़ते रहे और चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं और कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ता जा रहा है, देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू, फिर लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग कहेंगे जी डॉक्टर शालू क्या बात है आपकी, तो है ना, रिस्पेक्ट करेंगे। अभी तो हमें वैसा ही बनना है, और फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में दे विल फॉलो यू। 4th सीढ़ी है, वो फिर आपके जैसा बनना भी चाहेंगे, है ना। हमारे डॉक्टर विवेक दीक्षित है, डॉक्टर विवेक दीक्षित प्रभु बढ़ते जा रहे भक्ति में। इस बार हमने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया था हमारे द्वारका में, प्रभु जी आए, प्रभु जी के साथ में और भी डॉक्टर्स आए, और प्रभु जी ने देखा एक और डॉक्टर है हमारे डिवोटी है उनके साथ 25 डॉक्टर और आए। सो वो खुद ही बताते हैं, ये लोग भी बताते हैं अपना, कि जब शुरू करते हैं तो पीपल नेग्लेक्ट यू, देन पीपल एक्सेप्ट यू, देन पीपल रिस्पेक्ट यू, एंड वन डे पीपल वॉन्ट टू फॉलो यू। तो ये मार्ग है, इस मार्ग में दो ही चीजें देनी पड़ती हैं, प्रीमियम है ह्यूमिलिटी मींस विनम्रता और टॉलरेंस मींस सहनशीलता। जितना सहनशील व्यक्ति होगा, जितना विनम्र होगा वो व्यक्ति, उतना ही प्रेम और विश्वास, फेथ एंड लव को खरीद पाएगा, और उस खरीदने से वो भगवत धाम में अपना घर बना पाएगा। तो उस व्यक्ति को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा एग्जीक्यूटिव से धन्यवाद, अच्छा आप एक काम करिए, ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आ गई, मेरा बिल बढ़ रहा है, आपके फील्ड बॉयज भी तो होंगे कोई, भगवान के फील्ड बॉयज, उनको भेज दीजिए पूरा प्रोग्राम, मेरे को साक्षात समझना है, फोन कॉल पे इतना समझ नहीं आ रहा है। कहा ठीक है, हमने पहले से ही हमारे फील्ड बॉयज छोड़ रखे हैं, उनको कहा जाता है भक्त, वो धोती कुर्ते में तिलक लगाए घूम रहे हैं, और हमारा हमारे हमारे ब्रोशर्स भी उनके पास में, ब्रोशर क्या है भगवद गीता, और ब्रोशर खोल खोल के दिखाते हैं ये है ये मकान, ऐसा करोगे ये मकान, ऐसा करोगे ये मकान, ये प्रीमियम का ये मकान, अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत में जैसा करोगे वैसा मिलेगा, वो सब एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास भी कई बार आते हैं ना मकान बेचने के लिए कुछ लोग, तो कुछ लोग तो स्वीकार करके मकान खरीदते हैं और कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं। तो बोले ये सबके ऊपर है, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदते हैं, जो नहीं खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदते। हमारे फील्ड बॉयज तो घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एक बात और बता दीजिए, ईएमआई देनी पड़ती है तो ईएमआई का कोई अरेंजमेंट है लोन वगैरह? कहा दो ईएमआई है। कहा अगर कोई ये दो काम करता है तो धीरे धीरे उसके लोन चुकने लगते हैं, और एक समय उसका मकान जब वो पहुंचता है तो बिना खर्चा किए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। का क्या काम करना होता है? का पहला काम होता है हरि नाम का जप करना। जो व्यक्ति जप करता है उसका ईएमआई धीरे धीरे जीवन काल में प्रीमियम पूरा होता रहता है, फिर बाद में उसको कुछ देना नहीं पड़ता। और दूसरा है निरंतर एकादशी का व्रत करना। जो आदमी निरंतर एकादशी व्रत करता है और दृढ़ता पूर्वक हरि नाम जपता है, उसको फिर अपने आप ही उसकी ईएमआई पूरी होती है। शरीर छोड़ने के बाद में उसको बना बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट वैकुंठ धाम में घर मिल जाता है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। कहा अच्छा, आपने और कोई प्रश्न है आपके? कहने और कोई प्रश्न है? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कहा एक चीज ये बता रहा हूँ कि आप इतनी दूर कॉल किया आपने, भगवान भी बिजी रहते हैं, हमने अपने लोकल सेंटर भी बना रखे हैं, अगर कभी फोन करना हो एक लोकल सेंटर भी है। कौन सा है लोकल सेंटर? कौन सा है लोकल सेंटर? लोकल सेंटर में फोन करिए और आप अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। कौन सा है लोकल सेंटर, कौन बताएंगे? माता जी ने कहा टेंपल, टेंपल। उसने बताया आपके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, यहाँ पर चैत्य गुरु के रूप में। कहा एसटीडी कॉल मत करो, ये लोकल कॉल करो, ये अंदर ही बात करनी है ना। अंदर बात करने के लिए बाहर बातें करना बंद करना पड़ता है और अंदर बात करनी पड़ती है। अंदर बात करेंगे तो अंदर से ही जवाब भी आता है, और उस जवाब को पाने के लिए आपको अंदर कॉल मिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया लोकल कॉल। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम स्मृति ज्ञानम अपहोनम च वेदेष्ट सर्वम अहम एव्यो वेदो वेदांत कृत वेदवित अहम। भगवान ने कहा वेदों का संकलन करता मैं हूँ, लेकिन लोग अपना जीवन वेद पढ़ने में गुजार देते हैं, वेद पाठी बन जाते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं और वेदों का सार भगवद गीता को सोचते हैं, ये तो बच्चों के लिए है। लेकिन वेदांत कृत वेदावित अहम, मैंने ही वेदों की रचना करी है। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में कुछ जानने योग्य है तो मैं हूं। और आगे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम, कहां बैठा हूं? हृदय सानिविष्टम, हृदय के सानिध्य में बैठा हूं, हृदय में नहीं हृदय के पास, द रीजन ऑफ द हार्ट। सो आई एम स्टेइंग इन द रीजन ऑफ द हार्ट, अदरवाइज अगर हार्ट में बैठे होते तो हार्ट ट्रांसप्लांट के समय मेरे भगवान किसी और के हृदय में चले जाते, लेकिन वो हृदय सानिविष्टम हृदय के देश में बैठे हैं। हृदय देशे अर्जुन अतिष्ठति, अर्जुन मैं हृदय के देश में बैठा हूं, हृदय में नहीं बैठा हूं। तो रीजन ऑफ द हार्ट, सर्वस्य चाहम, मैं सब चाहत मेरे से ही आती है। सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टम स्मृति ज्ञानम अपहोनम, तीन चीजें जो आप याद कर पाते हैं, स्मृति ज्ञानम जो आप नॉलेज की बातें कर रहे हो, मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोकल बैठे भगवान यहां पर परमात्मा रूप में, स्मृति ज्ञानम और अपहोनम। अपहोनम मतलब हमारे योगीनाथ प्रभु मैसेज भेजते हैं 400-500 लोगों को, और आते कितने हैं 150-170-50-60 जैसे भी अलग अलग से। तो बाकी लोगों को क्या है भगवान से? अपहोनम। वो कहते हैं नहीं नहीं फालतू बातें हैं, कृष्ण भगवान थोड़ी है, ऐसे ऐसे कोई भी इस्कॉन वालों ने अपना बना लिया। They don't read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita इस्कॉन ने नहीं बनाई है। अभी क्या कहा भगवान ने? वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदांत कृत, वेदों को मैंने बनाया है। तो हम इस्कॉन ने बनाया भगवद गीता को, वेदांत कृत वेदवित अहम, मैं ही वेदों का रचना है। गीता प्रेस की उठाइए, अष्टावक्र की उठाइए, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक गूगल पे सर्च करिए, वर्ल्ड वाइड शंकराचार्य की गीता उठाकर पढ़िए, वेदों को भगवान ने बनाया है, इस्कॉन ने नहीं बनाया है। और लोग इस्कॉन के द्वेषी होकर या इस्कॉन को न फॉलो करके दे थिंक कि हम जहां सोसाइटी से जुड़े वही ठीक है, और अपने जीवन को मनुष्य शरीर को दिन प्रतिदिन इस हड्डी मांस के पुतले को गला रहे हैं। शंकराचार्य अब इस शरीर में थे, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, ये सघन वन है, गहरा वन, अंधकार कुआ है ग्रस्त जीवन, उसमें पड़ा हुआ है व्यक्ति, इसको जब पार कर जाएगी तब तुम सने हुए सुनने योग्य बन जाओगे। कृष्ण भावना भवित को सुनने योग्य तब बनोगे जब इस गहन अंधकार से बाहर निकलोगे। अंधकूपम भागवतम में वर्णन है, ये अंधा कुआ है। पता है हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उस पे एक घास लगा देते हैं और दूर से एक हथनी को दिखाते हैं जो कि पिक्चर होती है, और एक हाथी जो जंगली हाथी, उसको पकड़ना, उसके दांत तोड़ने, उसकी सूंड के नीचे बड़े बड़े दांतों के आइटम बनाए जाते हैं काट करके, उनको पकड़ते कैसे हैं? वो हाथी भागता है उस हथनी के पीछे काम वासना में, और भागते भागते एक गहरे उसके ऊपर पांव रखता है, भारी शरीर सीधा खाई में जाके गिरता है, और बाद में उसको वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश करते हैं, आरी से उसके दांतों को काट लेते हैं और बिना दांतों के उसको फिर छोड़ देते हैं, और उसके दांतों को क्या करते हैं, सामान बनाते हैं, और फिर हम उसको आगरा जाते हैं और खरीद के लाते हैं हाथी दांत का ताजमहल। हाथी आया कहां से? क्या सारे मरे हुए हाथी होते हैं? हाथियों को ऐसे पकड़ा जाता है, उनके दांतों को बिना दांतों के छोड़ दिया। जितने चिड़ियाघर में आप हाथी देखेंगे बिना दांतों, इनके दांत कहां गए? ये कोई वो तो है नहीं बच्चे की दूध के दांत गिर गए हाथी के, ये तो इनके हाथ दांत काटे गए हैं। तो क्यों काटे गए? काम वासना इस संसार के अंध कूपम में भागा जा रहा है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और गिर गया गहन अंधकार में। वही भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि गहन वन से बाहर निकलेगी तब तो तुम सुनने योग्य बनोगे। अभी तो हम लोग सुनने योग्य भी नहीं बने, सुनने योग्य बनेंगे तो आनंद आता है। वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है और तब फिर आनंद का अनुभव होता है। तो भगवान यहाँ पर यही हमको दर्शा रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि जब से मैं भगवान का भजन करने लगा हूं मुझे क्षमा करिएगा, मैं किसी देवी देवता की पूजा करता नहीं हूं, इवन मुझसे गायत्री मंत्र का जाप भी नहीं किया जाता, जो कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा होकर के गायत्री मंत्र और आदि गुरु के द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों का जाप करता है। माधवेंद्रपुरी कहते हैं ओ गायत्री मंत्र, ओ गुप्त मंत्र, ओ मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे हरिनाम में इतना प्यार हो गया है कि अब और मुझसे कुछ जपा नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता। यह है यतिराज, और इतना प्रेम हो जाने पर क्या होता है, भगवान आते हैं उनके पास। और यतिराज माधवेंद्रपुरी के पास भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं इतनी धूप इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं यही तुम्हारे सामने पहाड़ गोवर्धन के अंदर छुपा हुआ हूं। तो माधवेंद्रपुरी को एक ग्वाल बाल आकर के दूध का पात्र पिलाता है और दूध का पान करते हैं, उनको स्वप्न में भगवान कहते हैं तुम्हारे सामने वाले पहाड़ में हूँ, व्रजवासियों को इकट्ठा करो क्योंकि तुम एक महान यतिराज हो, सभी तुम्हें प्रणाम करते हैं। उनके कहने पर अनेकों व्रजवासी आते हैं, उस गोवर्धन पहाड़ को खोदा जाता है और उसके अंदर से कौन निकलते हैं, श्रीनाथ भगवान, है ना, गोपाल जी। श्रीनाथ वो जो आज कहां पर विराजमान है, नाथ द्वारा में उदयपुर में विराजमान। वो श्रीनाथ जी कहां प्रकट हुए, गोवर्धन पे गोविंद कुंड पर, माधवेंद्रपुरी यतिपुरा यतिराज जहां पर समाधि ग्रस्त रहते थे। उन्हें भगवान ने कहा मैं यहाँ हूँ इसके अंदर। भगवान को बाहर निकाला गया, अभिषेक किया गया, सब कुछ लगाया, भगवान को प्रसाद ग्रहण कराया। भगवान ने दूसरे दिन रात्रि में कहा यतिराज माधवेंद्रपुरी मैं चाहता हूँ कि मेरे को चंदन लगाया जाए। तो यतिराज माधवेंद्रपुरी की इच्छा थी कि भगवान की सेवा करें और भगवान से प्रेम इतना हो गया कि भगवान ने कहा मुझे चंदन दो, और चंदन भी कहाँ का दो, मलय चंदन, उड़ीसा जाओ और चंदन लेके आओ, मलय देश है वहां पर, मलय जंगल, वहां का चंदन ला। कितना चंदन चाहिए, 40 मन, हाँ एक मन में कितने किलो होते हैं, सोचिए आप, इतना मन चंदन लेकर आना, कैसे उठाकर लेके आएंगे अकेले, एरोप्लेन भी नहीं था, बैलगाड़ी बस कुछ भी नहीं था, पैदल पैदल चलना प्रारंभ किया। ईश्वरपुरी चैतन्य महापुरी के गुरु ईश्वरपुरी से भी पहले माधवेंद्रपुरी, 700-800 वर्ष पूर्व घटना, तब यहाँ क्या था हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन, पैदल पैदल चल कर के गए यहाँ से उड़ीसा, और उड़ीसा में जाकर के मलय देश चंदन जाने से पहले एक स्थान था जहां पर भगवान रामचंद्र के बनाए हुए विग्रह थे जिनका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ विग्रह, भगवान रामचंद्र जब त्रेता युग में थे तो सीता जी देखना चाहती थी कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम ही हैं या आपकी कोई लीला है जिसमें आप स्त्रियों और अनेक स्त्रियों से प्रेम भी करते हैं। तो रामचंद्र भगवान हंसकर के कहते हैं जब सीता मैं द्वापर युग में आता हूँ तो द्वापर युग में मैं स्वयं आता हूँ, त्रेता युग में मेरा मैं अवतार लेके आता हूँ, कृष्ण का अवतार है राम,
जब मैं त्रेता युग में आता हूँ तो मैं अवतार होता हूँ, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आता हूँ तो मैं अवतारी होता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और तब मैं गोपीनाथ कहलाता हूँ, और गोपीनाथ मतलब अनेकों गोपियों के नाथ। तो सीता जी कहती है, प्रभु मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रूप कैसा होगा। तो भगवान राम एक बाण निकालते हैं और पत्थर की शिला पर एक गोपीनाथ विग्रह बनाते हैं, कहते हैं मैं ऐसा हूँ, और साक्षात इतना सुंदर विग्रह स्वयं राम के द्वारा बनाया हुआ, और देख करके सीता जी की आंखों में आंसू आए थे, कहते हैं स्वामी कितना सुंदर विग्रह आपका गोपीनाथ, राम में तो आपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, पर इसमें तो आप मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ देंगे और आप कहेंगे बस जो प्रेम करेगा उसको प्रेम की वर्षा करूंगा। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि अहम् मम वरताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। इस संसार में प्रेम जो देगा उसको प्रेम दूंगा, भर भर कर दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था प्रभु जी ये श्लोक गलत है। मैंने क्यों बोले, वो कहते हैं कि जितना तुम दोगे उतना मैं दूंगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा। मैंने कहा तो क्या है आप दो दो, कहता है मैंने तो भगवान को एक बार चिट्ठी लिखी थी कि 10 लाख में से एक पैसा काट कर ही दे दो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो देना तो कुछ पड़ेगा तभी तो आएगा, आप दोगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इसीलिए लोग माला नहीं करते, कह रहे जब उसकी इच्छा होगी तब करेंगे, उसकी इच्छा कभी नहीं होगी। उसने कहा अपोहनम चाहा, अगर तुम भूलना चाहते हो तो तुम्हारी भूलने में मदद करूंगा, तुम रेपिस्ट बनना चाहते हो तुम्हारी रेपिस्ट बनने में मदद करूंगा, तुम सुअर की योनि में जाना चाहते हो तुम्हारी मदद करूंगा सुअर की योनि में परिवर्तित, मैं तुम्हारा मित्र हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, इस संसार की हर आत्मा का सुहृद, आई एम द फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो मित्र तो आपका बुरा थोड़ी चाहेगा, आप जो करना चाहते हो, फांसी पर चढ़ना चाहते हो आई विल हेल्प यू कि कैसे और प्रगति हो, जल्दी से जल्दी फांसी मिले, जल्दी से जल्दी आपकी योनि कुत्ता बिल्ली सुअर में परिवर्तन, भगवान हेल्प करेंगे। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो एक पैसा दे तभी तो फिर वो कुछ देगा, अगर तुम कुछ भक्ति नहीं देना चाहोगे तो कुछ भी नहीं देगा। इसलिए हमें जप करना पड़ता है। और फिर भगवान ने जब सीता जी को वो दिखाया गोपीनाथ विग्रह, उसी विग्रह को कलयुग में माधवेंद्रपुरी यतिराज ने देखा और वहां भोग लग रहा था, 12 कुल्हड़ों का भोग लगाया गया, खीर बनती है और इतनी सुंदर स्वादिष्ट खीर, उसका नाम है अमृत केली, अमृत के समान आज भी मिलती है। उस अमृत केली खीर को देख करके इनके मन में आया गोपाल जी के लिए ले चलो एक कटोरी भोग लगाऊंगा या टेस्ट कर लूं, फिर बाद में उनको भी वैसी बना के खिलाऊंगा। इतना सोचने मात्र से उनको फिर बाद में ग्लानि हुई, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाया जाता है उससे पहले उसको देखना नहीं चाहिए, उसको स्वाद नहीं चखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ओहोम गुलाब जामुन घर में बन गए अहम, अरे रुको रुको गुलाब जामुन बन गए, बाद में खाना, पहले भोग तो लगा दे। अब भोग लग चुका है, जिसने किया ना उसने भोग लगा दिया, सारा भोग लग गया। इवन कुत्ता बिल्ली भी अगर घर में हो और वो दृष्टिपात कर दे और आपका भोग समाप्त, आप भगवान ग्रहण नहीं करेंगे उसको। यस, भोग लगने के समय भोग को कवर करके भगवान के सामने ले जाना चाहिए, बच्चे का किसी का भी, मम्मा मम्मा इतना हलवा खाना है आपने बनाया, बेटा रुको भोग लग रहा है, ये नहीं। अगर उसने देख लिया तो अभी भोग लग गया ना, उसने भोग लिया उसको नेत्र मात्र से, अब भगवान कर। इसलिए जो रसोई होती है हमारे मंदिरों में उनको अलग बनाया जाता है, डीटी किचन बोलते हैं, विग्रह रसोई घर, वो बिल्कुल मंदिर के अंदर होता है, उसमें एक पुजारी और कुक करते हैं, सेवा करते हैं, वो फिर डायरेक्ट ही अंदर से अंदर जाता है भगवान के लिए, अगर वो बाहर आएगा तो कोई ना कोई की दृष्टि पड़ेगी पड़ेगी, इसलिए इस तरह से। तो उनकी दृष्टि पड़ी और उनके मन में ही आया, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने कहा ओहो मैंने क्या किया, अपराध हो गया, अब तो भगवान खाएंगे नहीं, इस कुल्हड़ को मैंने देख लिया है। पुजारी ने भोग लगाया और भोग लगाकर उठा करके सब में वितरित करके चला आया और आकर दोपहर की नींद लेने लगा। स्वप्न में भगवान गोपीनाथ प्रकट हुए, बोले कैसे हो पुजारी, तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक प्रिय भक्त आए हैं गोवर्धन से चलकर पैदल पैदल मुझसे मिलने, मैंने उनके लिए खीर उठा के रखी तुमने उनको दी नहीं। तो बोले कि भगवान मैंने तो सारी खीर बांट दी। कहा तुम्हारी दृष्टि से तुमने बांट दी, तुम देखो जाकर दोबारा से, एक खीर का कटोरा एक कुल्हड़ मैंने बचा के रखा है अपने प्रिय भक्त महादेवपुर। जब वो जाए अंदर जाकर के देखा तो पता चला भगवान के पैर के पीछे भगवान ने उठा करके एक कुल्हड़ पीछे रखा हुआ है। अब सोचिए भगवान का विग्रह, इसको हम पत्थर बोलते हैं मार्बल, इसको शीशे में बंद करके एक हफ्ते के लिए चले जाते हैं, हम पलट कर कितनी बार मन में आता है चलो यार आज भी जाके दर्शन, कथा नहीं होगी, भगवान तो है, प्रणाम करके आते हैं, प्रभु ठीक हो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना। और हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हो कन्हैया यहाँ आराम हो रहा है। हम नहीं आते सेवा करने, हम तो अपना सोते हैं घरों में, आराम हो रहा है, हम नहीं आते सेवा करने। तो आराम नहीं करना है भगवान के लिए, सेवा करनी चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने उस मार्बल विग्रह ने, उस पत्थर के विग्रह ने उठा करके कुल्हड़ छुपाया, जिसे पुजारी ने देखा नहीं, भगवान के कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ, खीर को चुराने वाले भगवान। तो सोचिए जब भगवान खीर को चुरा सकते हैं, उसके लिए उस भक्त के प्रति कितना प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम के बिना तो वो दे नहीं रहे ना। पहले आप देंगे तो भगवान देंगे रिटर्न में। इन्वेस्टमेंट होता है तब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई होता है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, इन्वेस्टमेंट। और फिर गोपीनाथ भगवान ने उनके लिए खीर चुराया, और उन्होंने पुजारी ने जाकर सबसे कहा, कौन है यहाँ महान संत माधवेंद्रपुरी, ये लीजिए आपके लिए क्या लाए हैं, खीर भगवान ने भेजे। और रोने लग गए, भगवान ने मेरे लिए, ओ प्रभु आपने इतनी वो किया कष्ट। और फिर उन्होंने वो खीर भी खाई और कुल्हड़ को भी तोड़ के रख लिया, उसके पीसेस मिट्टी के रोज खाते थे, क्योंकि स्वयं भगवान ने छुआ ना उसको, उठाया भगवान। तो है इतनी श्रद्धा, भगवान के एक एक पीस को वो खाते थे कुल्हड़ को। उसके बाद जब वो मलय चंदन लेकर आए, बहुत भारी मलय चंदन कंधे पर उठाकर चल रहे थे, सन्यासी व्यक्ति, खाना पीना भी नहीं होता था, भिक्षा मांग के खाते थे, कमजोर शरीर, वो आ रहे हैं। तो रस्ते में जब उन्होंने विश्राम किया और गोपीनाथ का पुनः दर्शन किया, तो रात्रि में भगवान ने कहा, इतनी दूर चंदन उठाकर जाओगे लगाने के लिए, यहीं लगा दो, यहाँ लगाओगे मुझे वहां शांति मिल जाएगी, क्योंकि मैं श्रीनाथ में और गोपीनाथ में कोई फर्क नहीं है। श्रीनाथ मतलब लक्ष्मी के नाथ और गोपीनाथ मतलब गोपियों के नाथ, कहीं भी लगाओ मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान एक ही है, चाहे उसको जगन्नाथ कहो, चाहे उसको गोपीनाथ कहो, चाहे उसको श्रीनाथ कहो। तो ऐसे भगवान के लिए हमें कर्म कांड आदि छोड़कर विशुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, जो सभी कलमश से रहित हो। तो इसलिए दृढ़ता पूर्वक अपना हरि नाम लीजिए। इसमें भगवान कह रहे हैं वेद आदि चीजों को छोड़ दीजिए, पूजा पाठ कर्म कांड यज्ञ दान आदि सबसे इंपॉर्टेंट है संसार में हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम जपिए, और जब मौका मिले तो घर में ग्रस्त जीवन में कीर्तन करिए। घर में करताल होनी चाहिए, 300 रुपए का छोटा करताल आता है, 400-300 रुपए का, वृंदावन या मंदिरों से ले सकते हैं, इस्कॉन मंदिरों से। ग्रस्त व्यक्ति के लिए वर्णन है भागवतम में, रोज 3 घंटे घर में कीर्तन होना चाहिए, तब वो ग्रस्त आश्रम बनता है। आश्रम वो जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ आश्रम ना हो वो गृह मेदी घर है, जहाँ अपना अपना गा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम तेरी प्रॉब्लम टीवी की प्रॉब्लम, लेकिन कीर्तन नहीं है। तो कीर्तन ना होने के कारण कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। जो कीर्तन नहीं करते उनको नर्तकी बनना पड़ता है, वो संसार की कठपुतली बन के नाचते हैं। जो कीर्तन करते हैं वो फिर भगवान को अपने घर में नचाते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान को अगर आप नचाना चाहते हैं, कहते हैं ना एक गायक कवि लिखते हैं, छछिया भर छाछ पर नाच नचायो, किसको, छोटी सी छाछ को दिखे गोपियां जो है वो नचाती हैं। तो छाछ पर नाचते हैं भगवान, आप भी ला दो एक अमूल छाछ का डब्बा, नाचेंगे भगवान। भगवान उनके प्रेम पे नाचते हैं, भगवान उनके विश्वास पे नाचते हैं, छाछ पे नहीं नाचते। छछिया भर छाछ पर दूध नाच नचायो, नाच नहीं नाचते हैं वो उनके प्रेम से, कि कृष्ण हमारा खाएंगे पिएंगे तो कितना सुंदर बन जाएंगे, ये भाव जिस दिन होगा उस दिन कृष्ण होंगे। तो सभी कर्म कांडों को छोड़िए, पूजा पाठ आदि सब समाप्त करिए, अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं, वरना मनुष्य शरीर जा रहा है। शंकराचार्य ने अपने मरने से पहले अपने अंतिम समय में कहा, मेरे अनुयायी शिष्यों में पूरा जीवन शिवजी की पूजा बताता रहा, लेकिन सच्चाई है भगवान कृष्ण का भजन। कहा कि अगर तुमने कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनर जन्म होगा पुनर्मरण होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलो दुस्तारे, बहुत ही गंदा संसार है ये संसारे खलो दुस्तारे, पाहे मुरारे कृपा कृपया पारे पाहे मुरारे, ओ मुरारी मुर राक्षस को मारने वाले मुरारी हम पर अपनी कृपा करिए। तो शिष्यों ने कहा, आपने तो शिवजी की भक्ति बताई, हम क्या करें। कहा मेरे को भगवान ने सेवा दी थी, जाओ इस संसार के लोगों को क्या करो, गुमराह करो, इनके अंदर इनको चेक करो कि ये अपनी इच्छा के लिए भक्ति करते हैं या कृष्ण प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, है ना। तो जो लोग अपनी इच्छा के लिए भक्ति करते हैं उन लोगों को मायावाद खींच के ले जाता है, उन लोगों को कर्म कांड खींच के ले जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं भक्ति करनी है, और शंकराचार्य ने फिर अंतिम उपदेश दिया, कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, बोलिए सब लोग, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, बोलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मूड मते मतलब मूड मतलब मूर्ख और मति मतलब जिसकी मति मारी गई है। इस संसार में जो मूर्ख है जिसकी मति मारी गई है वो ही गोविंद का भजन नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति की मति सही है, जिसको मूर्ख नहीं है, जो सही में होशियार बोलता है कि मैं होशियार हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, उस व्यक्ति को भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।